ये रेडियो नेपाल है अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन में शिरकत कर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड लौटे स्वदेश। वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध वृतिष्णा फैलाने वालों से सचेत रहने की जरूरत है, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का कथन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित और अस्थायी युद्ध विराम के बाद इसराइल के हमले में 700 से अधिक फिलिस्तीनियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन कोप 28 में शिरकत कर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड आज स्वदेश लौटे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में जारी सम्मेलन में सहभागी होने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड मार्गशीर्ष 13 गते यूएई गए थे। सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड ने मानव जाति और सभ्यता को बचाने के लिए हिमालय को बचाने का आह्वान करते हुए कहा था कि नेपाल जलवायु न्याय के पक्ष में खड़ा है। माना जा रहा है कि जलवायु संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री की सहभागिता से नेपाल को बहुपक्षीय फायदा हुआ है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध वृतिष्णा फैलाने वालों से सचेत रहने की जरूरत है। समृद्धि के लिए संकल्प यात्रा में रहे अध्यक्ष ओली ने आज दैलेख के राकम में आयोजित सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि गणतंत्र को उलटाने की बात करने वालों की कुचेष्टा सफल नहीं होगी। अध्यक्ष ओली ने आगे कहा कि लोकतंत्र के विरोध में बोलने वाले लोग नेपाल और नेपाली के हित के पक्षधर नहीं हो सकते। आज 32वें अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला ने सड़क यातायात और धार्मिक स्थल का निर्माण करते समय उन्हें विकलांग मैत्री बनाने पर ध्यान देने की प्रतिबद्धता जताई। मौके पर राष्ट्रीय अपांगता महासंघ नेपाल के अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए तीनों तहों की सरकारों को सकारात्मक होना चाहिए। ललितपुर महानगर पालिका के प्रमुख चिरी बाबू महर्जन ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ उनके जीवन को आसान बनाने के लिए समय पर नीतियां और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज 32वें अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख महर्जन ने कहा कि विकलांगों के कठिन जीवन को सहज बनाया जाएगा। पोखरा महानगर पालिका के प्रमुख धनराज आचार्य ने कहा कि महानगर द्वारा बनाया जाने वाला पूर्वाधार विकलांगों के अनुकूल होगा। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आयोजन के बाद से हर साल 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सभा की विधान व्यवस्थापन समिति में शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक के ऊपर सैद्धांतिक विचार विमर्श शुरू हुआ है। समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री प्रमिला कुमारी ने कहा कि 2081 वैसाख 1 गते के भीतर विश्वविद्यालय के संपूर्ण भौतिक संरचना निर्माण संपन्न करने के हिसाब से काम चल रहा है। कोशी प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री केदार कार्की के सिफारिश पर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग ने कार्य विभाजन सहित जिम्मेदारी में फेरबदल किया है। कार्य विभाजन के अनुसार मंत्री शमशेर राय को आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय, मंत्री गणेश प्रसाद उप्रेती को पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय और मंत्री कमल प्रसाद जवेगू को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी मंत्रालयों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री कार्की खुद संभालेंगे। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती ने कहा कि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से नियमित रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के काम को सरकार ने प्राथमिकता में रखी है। नेपाल एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल्स एंड टूर एजेंट नाटा लुम्बिनी प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज मंत्रालय में मुलाकात करते हुए मंत्री किराती ने कहा कि भैरवा विमानस्थल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाले जहाजों को प्रत्येक उड़ान में 5 लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप देने के हिसाब से सरकार ने कार्यक्रम लाने की तैयारी की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई के बीच युद्धविराम के बाद शुक्रवार को शुरू हुई लड़ाई दूसरे दिन भीषण हो गई। अब इजराइल ने गाजा के दक्षिणी हिस्से में बमबारी शुरू कर दी है। घनी आबादी वाले दक्षिणी गाजा और वहां के सबसे बड़े शहर खान यूनिस में कई स्थानों पर इजरायली सैनिक और हमास के लड़ाके आमने सामने लड़ रहे हैं। इस बीच इजराइल को युद्ध में अमेरिका द्वारा की जा रही संयम बरतने के आह्वान का सामना भी करना पड़ रहा है। अस्थायी युद्ध विराम खत्म होने के जैसे ही इजरायली सेना ने इलाके पर हमला किया तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति की टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद शनिवार को इजरायली फाइटर जेट्स और तोपखाने ने गाजा पर भारी बमबारी की जिसमें कई निर्दोष फलिस्तीनी मारे गए। साथ ही अमेरिकी रक्षा सचिव ने नागरिकों की रक्षा करना इजरायल के लिए नैतिक जिम्मेदारी माना। शनिवार को वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं की टिप्पणियों ने वाशिंगटन की ओर से इसराइल पर अधिक सावधानी बरतने के लिए दबाव डाला। इजरायली सेनाओं ने दूसरे दिन गाजा में 400 ठिकानों को निशाना बनाया। दो दिनों की लड़ाई में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 700 तक पहुंच गई है जबकि 650 घायल हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन में शिरकत कर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड लौटे। स्वदेश वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध वृतिष्णा फैलाने वालों से सचेत रहने की जरूरत है, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का कथन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित और अस्थायी युद्ध विराम के बाद इसराइल के हमले में 700 से अधिक फिलिस्तीनियों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।